ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಾಮುದೀರಯೇ ನಶ ಪ್ರಾಯೇಶ ಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೇ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ ಸ್ಕಂದ 10 ಅಧ್ಯಾಯ 18 ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 12. ಭ್ರಮಣೈ ಲಂಘನೈ ಕ್ಷೇಪೈ ಆಸ್ಫೋಟನ ವಿಕರ್ಷಣೈ ಕ್ರೀಡತು. ನಿಯುಧ್ಯೇನ ಕಾಕಪಕ್ಷ ಧರೋ ಕ್ವಚೇತ್ ಭ್ರಮಣೈ ಲಂಘನೈ ಕ್ಷೇಪೈ. ಭ್ರಮಣೈ ಲಂಘನೈ ಕ್ಷೇಪೈ ಭ್ರಮಣೈ ಲಂಘನೈ ಕ್ಷೇಪೈರ ಆಸ್ಫೋಟನ ವಿಕರ್ಷಣೈ ಆಸ್ಫೋಟನ ವಿಕರ್ಷಣೈ ಚಿಕ್ರೀಡುಚೋರ್ನಿಯೋಧ್ಯೇನ ಚಿಕ್ರೀಡುಚೋರ್ನಿಯೋಧ್ಯೇನ ಆಪಪಕ್ಷಧರೋಪಚೇ ಆಪಪಕ್ಷ ಕಾಕಪಕ್ಷಧರೋಪಚೇ. ಭ್ರಮಣೈ ಲಂಘನೈ ಕ್ಷೇಪೈ ಭ್ರಮಣೈ ಲಂಘನೈ ಕ್ಷೇಪೈ ಆಸ್ಫೋಟನ ವಿಕರ್ಷಣೈ ಆಸ್ಫೋಟನ ವಿಕರ್ಷಣೈ ಚಿಕ್ರೀಡುಚೋರ್ನಿಯುಧ್ಯೇನ ಚಿಕ್ರೀಡುಚೋರ್ನಿಯುಧ್ಯೇನ ಕಾಕಪಕ್ಷಧರೋಪಚೇತ್ ಕಾಕಪಕ್ಷಧರೋಪಚೇತ್
ಚಿಕ್ರೀಡುಚೋರ್ನಿಯುಧ್ಯೇನ ಕಾಕಪಕ್ಷೋಧರೋಪಚೇತ್
चक्कर लगाकर लंगने ही कूद फांड क्षेप ही फेंक कर हास्फोटन ही चपत लगाकर विकर्षण ही तथा घसीट कर चिक्रीडतु उन्होंने कृष्ण तथा बलराम ने क्रीड़ा की न्युध्येन नडकते हुए काक पक्षः बालों की गुच्छा दोनों ओर लटकते हुए धरो पकड़ते हुए क्वचित कभी अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की चार अनुवाद कृष्ण तथा बलराम चक्कर काटते कूदते फेंकते तप तपाते तथा लड़ते भिड़ते हुए अपने ग्वाल मित्रों के साथ खेलने लगे। कभी कभी कृष्ण तथा बलराम बालकों के सिरों से चुटियां खींच लेते थे। तात्पर्य आचार्यों ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। ब्रह्मण ही शब्द बताता है कि बालक मशीनों का अनुकरण करते हुए कभी कभी तब तक चक्कर लगाते जब तक घूमरी नहीं आने लगती। कभी कभी वे कूदते लंगने क्षेपैहि शब्द बतलाता है कि वे कभी कभी गेंद या पत्थर जैसी वस्तु फेंकते और कभी कभी वे एक दूसरे को अपनी भुजाओं में झपट कर दूर फटक देते। आस्फोटन का अर्थ है कि वे एक दूसरे के कंधे तपतपाते या पीठ ठोकते। विकर्षण ही शब्द सूचित करता है कि खेल खेल में वे एक दूसरे को घसीटते थे। न्युद्येन शब्द लात ठोककर कुश्ती लड़ने तथा अन्य प्रकार का मैत्रीपूर्ण लड़ाई करने को सूचित करता है। काक पक्षधरो का अर्थ है कि कभी कभी कृष्ण तथा बलराम खेल खेल में अन्य बालकों की चुटियां पकड़कर खींचने लगते। ओम ज्ञानिवरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामेहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी हम भागवतम के दसवां स्कंद का ये अठारहवां अध्याय का चर्चा कर रहे हैं। अठारहवां अध्याय का जो शीर्षक है बलराम ने प्रलम्बासुर का वध करना। प्रलम्बासुर का वध का लीला तो बाद में वर्णन हो रहा है। अभी किस प्रकार कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में जंगलों में प्रवेश किए गाय चराते हुए और ऐसे नित्य इस प्रकार करते करते क्या क्या लीला करते थे। गाय तो चरने के लिए आगे चले जाते थे लेकिन सबसे पहला जैसे प्रवेश किए सबसे पहला कृष्ण नृत्य करने लगते डांस करने लगते। दसवां श्लोक में वर्णन है कि किस प्रकार कृष्ण ने क्या किया नृत्य किया। तो कृष्ण का नृत्य जो है बड़ा अद्भुत है। तो नृत्य के विषय में ऐसा वर्णन किया जा रहा है कि भगवान का जो चलना ही नृत्य है। अगर चलना ही नृत्य है तो अगर नृत्य करेंगे तो कितना अद्भुत होगा। कथागानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी। नाट्यम गमनमपि गमनमपि गमन मतलब चलना। भगवान श्री कृष्ण का चलना ही नृत्य है। अगर नृत्य करेंगे कितना अद्भुत होगा। जैसे कृष्ण नृत्य करना शुरू किए तो क्या हुआ बाकी अन्य जितने भी ग्वाल बाल है वो गाना शुरू किए।
जैसे कुछ ग्वाल बाल गाना शुरू किए, बाकी अन्य ग्वाल बाल जो है कोई वाद्य सामग्री बजाने लगा, कोई बांसुरी बजाने लगा, कोई अपना जो बफेलो हॉर्न जुगल जो है वो बजाने लगा, और कुछ लोग इनको देख के बाकी सब नृत्य करने लगे। तो एक आचार्य वर्णन करते हैं, कृष्ण नृत्य करना शुरू किया। क्यों नृत्य करना शुरू किया? ये दिखाने के लिए, नृत्य होता क्या है देखो, व्हाट इज डांस, लेट द होल वर्ल्ड सी। तो जैसे इस प्रकार का नृत्य सब वाद्य सामग्री सब चल रहा है, एकदम बिल्कुल एक प्रकार का आनंदमय वातावरण हो रहा है, तब तो ये देख के देवताओं को रहा नहीं गया। पिछले वाला ये 12वां श्लोक है, 11वां श्लोक में देवताओं के विषय में वर्णन है। वैसे देवता लोग जब भगवान प्रकट हुए थे सब आए थे, उनका गुणगान किया, लेकिन जब देवताओं ने ये जो चीज़ देखा, वृंदावन को दर्शन किया ऊपर से, ये देख के वो सोचने लगे कि ये कितना अद्भुत वातावरण है, अगर हम जाएंगे अपने ही स्वरूप में जाएंगे तो बिगड़ जाएगा पूरा मामला। मान लो कि बच्चे खेल रहे तो नाच रहे अपने अपने अपनी मस्ती में है, कोई अचानक से कोई बड़ा व्यक्ति जाता है तो क्या होता है, सब बंद हो जाता है कि नहीं, डर जाते हैं, उनके सामने नहीं करने का, शर्म आती है कि नहीं। लेकिन जब बच्चे खेलते उस समय बड़े बड़े थोड़ा दूर रहना चाहिए, बड़े साथ में रहते तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो ये जो देवता है, जैसे श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, ये जो देवता है ना, देवता हैं, तो वो लोगों ने क्या किया कि हम भी इस नृत्य में भाग लेंगे, हम भी इस खेल में भाग लेंगे। तो अगर कोई सोचे कि ये तो बचपना जैसा खेल रहे, बड़े भगवान हैं, ये तो बच्चे जैसे खेल रहे, क्या सच में भगवान है क्या? अगर किसी के मन में शंका है, उसको दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने बीच में 11वां श्लोक कहा। सुखदेव गोस्वामी कहा, गोपजाति परिच्छिन्ना गोपजाति परिच्छिन्ना, परिच्छिन्ना मतलब उन्होंने ऐसा वेशभूषा धारण किया। किसका वेशभूषा धारण किया? गोपजाति, गोप जातियों का वेशभूषा धारण किया, यानी उस बच्चों में ये देवता लोग आ गए। देव देवा गोपाल रूपेण, देवा गोपाल रूपेण, देवता लोग जो है ये गोप जाति परिच्छिन्न देव गोपाल रूपेण ईदृशे कृष्ण नामोच नट इव नटनम नृपः, नट इव नटनम नृपः। ये देवता लोग आके क्या किए, अपना जो गोपाल का रूप धारण किए देवता लोग, आके उस ग्रुप में मिल गए। इंद्र है, चंद्र है, शिव जी है, सब लोग आ गए, सारे देवता लोग भी, बाल बाल तो ऐसे अपने मजे में घूम रहे, ये देवता लोग भी आ गए। आके इन कृष्ण रामो ईदृशी कृष्ण रामो च नाट इव नटम नृपः, नट इव नटन नृपः। वो जैसे कृष्ण राम, राम और कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण बलराम दोनों गोपाल के रूप में हैं, देवता भी गोपाल के रूप में आकर उनको स्तुति करने लगे। तब इधर कोई प्रश्न उठा सकता है, ये जो देवता लोग हैं और कृष्ण और बलराम, कृष्ण और बलराम का तो जन्म ही, मतलब उनका स्वाभाविक रूप है, निजी रूप है गोपों का रूप। अगर कृष्ण से पूछा जाए आप कौन हो, तो वो ये नहीं कहेंगे मैं भगवान हूँ, ये नहीं कहेंगे मैं द्वारकाधीश हूँ, वो ये नहीं कहेंगे मैं नारायण हूँ। उनको पूछेंगे कृष्ण से, निजी आपका परिचय क्या, वो बोलेंगे मैं गोपाल हूँ, आई एम गोपाल, इज आइडेंटिटी कृष्णा हिमसेल्फ गिव्स। यानी अगर आपसे पूछा जाए आप कौन हो, तो आपके लिए अति प्रिय पहचान जो है उस हिसाब से आप अपना परिचय देंगे। लेकिन तो आप जो है, आपका पहचान अनेक हो सकता है, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप किसी का माँ हो सकते हैं, किसी का पिता हो सकते हैं, किसी का भाई हो सकते हैं, अनेकों अनेकों पहचान हमारा होता है। लेकिन अगर आपसे एक बार पूछा जाए, आप अनेकों अनेकों पहचान में आपका पहचान दीजिए, तो अगर छोटी बच्ची की माँ रहेगी क्या बोलेंगे, मैं मोनू की माँ हूँ। भले वो किसी के पत्नी है, वो कहीं कोई समाज का अध्यक्ष भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनके लिए प्रिय वो मोनू है, तो वो मोनू की माँ ऐसी बोलेगी। जैसे मान लो कोई पुरुष से पूछेंगे आप कौन हो, अगर उनका ऐसा है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, उसके लिए अति प्रिय वो पहचान दे सकता है। वॉट एवर इज मोस्ट डियर उसको अपना देगा। इसी प्रकार कृष्ण से अगर पूछा जाएगा आप कौन हो, तो वो तुरंत यही जब मैं गोपाल हूँ, दिस इज द आंसर कृष्ण गिव्स। तो कृष्ण की जो स्वयं रूप का जो स्थिति है वो है गोपाल। भले ही सारे ब्रह्मांड को मालिक है, पर भले ही परमात्मा है, भले ही वो द्वारकाधीश है, भले ही वो नारायण है, वो कितने भी संकर्षण है, इनका कृष्ण का ही अधिको स्वरूप है, लेकिन फिर भी अगर कृष्ण से जाके पूछेंगे आप कौन हो, तो यही जवाब देंगे मैं गोपाल हूँ, आई एम गोपाल। तो इसलिए इधर कहा गया है इदृशी कृष्ण राम ओचा। तो इदृशी ये जो शब्द का अर्थ दिया गया है दे वर्शिप्ड कृष्ण राम ओचा, कृष्ण और राम को दोनों को पूजा किए। तभी ये प्रश्न आता है इधर, ये देवता लोग कृष्ण और राम को पूजा किए, मतलब कैसे पूजा किए? ग्वाल बाल के रूप में आके थोड़ी ना पूजा किया जा सकता है। ग्वाल बाल पूजा करने लगे तो कृष्ण का फिर ये जो कृष्ण और बलराम की जो लीलाओं में भारा पड़ेगी। इसलिए कृष्ण और बलराम की जो लीलाएं हैं, ग्वाल बाल की जो लीलाएं हैं, उनमें बाधा नहीं पहुंचाते हुए, उनमें से थोड़ा सा भी कुछ भी रुकावट नहीं आए, इसलिए वो लोगों ने क्या किया, अपने आप को भी ग्वाल बाल का रूप धारण करते हुए कृष्ण और बलराम के साथ साथ पे जुड़ गए। और ये सारे देवताओं ने क्या किया, मन ही मन में कृष्ण और बलराम की जो अन्य लीलाओं को स्तुति करने लगे और लीला में भाग लिए, नाटक किए कि हम भी ग्वाल बाल हैं। और किसी ग्वाल बाल को मालूम नहीं पड़ रहा था, कृष्ण और बलराम को मालूम भी नहीं पड़ा इतना तक कि ये सारे देवता लोग हमारे साथ में आए। यार ये देवता लोग खास करके शिव जी है, लोगों का वर्णन आया है कि बड़े बड़े देवता शिव जी, इंद्र और सब आए। तब प्रश्न आ सकता है कि ये ग्वाल बाल का रूप धारण करके कृष्ण के साथ खेलने लगे। कृष्ण तो देवताओं के प्रभु हैं, देवताओं का मालिक है, तो उनका प्रति ईश्वर भावना रहती है, कृष्ण हमारे ईश्वर है, तो क्या ईश्वर भावना को त्याग किया है लोगों ने? यह अपराध नहीं हुआ? मान लो कि आपका मालिक है, तो एक सर्वेंट है, नौकर है, तो मालिक अपने परिवार वालों के साथ वो कुछ खेल कूद में भाग ले रहा है, तो क्या कोई हिम्मत है कि ये जो सर्वेंट है, जो नौकर है, वो भी उस खेल कूद में भाग ले? मान लीजिए, समझ लीजिए एक नौकर है, उसका मालिक है, मालिक की परिवार जो है कोई कहीं गए हैं, उनको नौकर को भी लेके गए, कोई मालिक जो अपने परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, अन्य परिवार वालों के साथ कुछ खेल रहा है, मस्ती मजाक कर रहा है, तो ये नौकर को उधर जाके मस्ती मजाक करने की औकात है? कर सकता है, अपराध नहीं माना जाए? तो इधर कहा गया है, आचार्य कहते हैं इसमें कोई अपराध नहीं है। क्यों अपराध क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण की लीलाओं में बाधा नहीं पहुंचे। कृष्ण का अगर मान लो कि वो देवता लोग शिवजी स्वयं आ जाते, समझ लीजिए ग्वाल बाल खेल रहे, तो शिवजी स्वयं आ जाते क्या हो जाता, तो उधर के रसों का आस्वादन भंग हो जाता है। तो इसलिए ये लोग जितने भी देवता है, भले ही वो ग्वाल बाल का रूप धारण करके उधर गए, जाके कृष्ण की लीलाओं को उन्होंने आस्वादन किया, वो एक और एक ग्वाल बाल के रूप में नाटक किया, लेकिन फिर भी हृदय में उनके अंदर जो भगवान के प्रति जो आदर की भावना है वो कभी नहीं गई। तो इसलिए केवल एक नाटक मात्र करने गए थे, उन्होंने ऐसा कृष्ण की लीलाओं में बाधा नहीं पड़े ये भावना उनके हृदय में होने की वजह से इसमें कोई अपराध नहीं माना गया है। तो ये बात ये 11वां श्लोक में हमको प्राप्त होता है, क्योंकि जैसे कृष्ण नृत्य करने लगे, अन्य ग्वाल बाल नृत्य करने लगे, और ये देख के बड़े आश्चर्यचकित होते हुए उसमें देखने की आकांक्षा हुई देवताओं को, लेकिन साथ साथ में उनको लीलाओं को भंग नहीं करना था, इसलिए देवता लोग गए उधर इदृशी, वो लोग भी क्या किए, ईदिरे, वो लोग पूजा किया और स्तुति किया। अभी आज का जो 12वां श्लोक है, तो प्रश्न आता है कि भगवान ने किस किस प्रकार की लीला किया, नृत्य तो जरूर किया है, लेकिन बाल बालों के साथ उनका क्या क्या लीलाएं थी, कैसे कैसे उन्होंने लीलाएं किया, पूरा दिन कैसे उन्होंने बिताया ग्वाल बालों के साथ, उसका वर्णन इस श्लोक में हुआ है। इस श्लोक में ये जो शब्द है पांच शब्द आया है। सबसे पहला शब्द है ब्रह्मण ही, दूसरा शब्द आया है लंघनैः, तीसरा शब्द आया है क्षेपैः, चौथा है आस्फोटनः और पांचवा है विकर्षणैः। बाद में ये पांच शब्दों के बाद चिक्रीडतुः मतलब इस प्रकार की लीलाओं उन्होंने भाग लिया। ये पांच शब्दों का जो अर्थ है तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार दिया है, तो बड़ा अद्भुत तरीके से इन पांच शब्दों का वर्णन हुआ है। सबसे पहला हम देखते हैं कि भ्रमण ही करते भ्रमण करते थे। अभी ये भ्रमण ही का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भ्रमण ही, भ्रमण करते थे मतलब क्या है, कैसे भ्रमण करते थे। एक आचार्य ने कहा कि ग्वाल बाल जो है वो नृत्य करते करते भ्रमण करते थे, यानी जैसे वो वृंदावन फॉरेस्ट में एंटर किया, जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, जंगल में प्रवेश किया, कृष्ण जैसे नृत्य करना शुरू किया, जब तक वापस घर में नहीं आते तब तक डांस ही डांस चलता था उनका। नृत्य भ्रमण करते थे, कैसे भ्रमण करते थे, जैसे पिछले जो श्लोकों में वर्णन हुआ है, नृत्य करते करते भ्रमण ही, एक एक वर्णन है, एक इसका अर्थ है। दूसरा अर्थ यह है कि भ्रमण ही कि एक आचार्य ने वर्णन किया भ्रमण ही के अर्थ कि वो नृत्य करते करते वो क्या करते थे, वो एक ग्वाल बाल बीच में घूम कर भ्रमण करता था, मतलब तो दोनों हाथ उठा के, जब भी हम लोग कीर्तन में क्या होता है कभी कभी हम लोग डांस करते ना, घूमते ना ऐसे ऐसा, हाँ ऐसा ग्वाल बाल भ्रमण करते, कैसे भ्रमण करते थे, ऐसा अपने आप को मशीन जैसे घूमते थे, घूमते 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 कब एक बार चक्कर आता है ना, चक्कर आने तक घूमते थे, और जैसे चक्कर आता है तो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, तो सारे ग्वाल बाल उनको पकड़ते थे, पकड़ के उनको संभाल लेते थे, और जैसे एक ग्वाल बाल पकड़ लिया तो दूसरा ग्वाल बाल शुरू हो जाता था घूम करना। तो एक एक, एक आचार्य ने इस प्रकार वर्णन किया। अभी एक आचार्य ने वर्णन किया है भ्रमण ही शब्द का। अभी ये जो डांस होने के बाद आनंद में अचानक से क्या होता है कि ग्वाल बालों में कुश्ती शुरू हो जाता है। अभी ये जो श्लोक है इसके अंदर ग्वाल बालों के बीच में कुश्ती का वर्णन है। कैसे वर्णन है, मान लो एक दूसरे के पहले कुश्ती करने से पहले क्या होता है, आपने देखा कभी कुश्ती कैसे लड़ते हैं, तो दोनों क्या करते हैं, दोस्तों कुश्ती लड़ने वाले हैं दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाते हैं, और कभी वो दूसरा इधर खड़ा रहेगा दूसरा इधर खड़ेगा और घूमते रहेंगे, वो एक जगह ऐसे सीधा भिड़ेंगे नहीं, ऐसा घूमेगा ये ऐसा घूमेगा ऐसा घूमेगा, ये भ्रमण ही मतलब भ्रमण करने वाला है। तो भ्रमण ही शब्द का ये तीसरा अर्थ है। तो भ्रमण ही के अनेक अनेक अर्थों में एक ये अर्थ है कि किस प्रकार एक ग्वाल बाल जो है वो इस प्रकार भ्रमण करते थे, कुश्ती से पहले जो किया गया जो भ्रमण है उसका वर्णन ये आया है। तो इन ये जो शब्द है, पांच शब्द जिनका भी वर्णन हुआ है इस श्लोक में, ये पांच शब्दों के वर्णन में अलग अलग आचार्य ने अलग अलग प्रकार के अर्थ क्यों क्यों दिए, तो इसके ऊपर थोड़ा विचार किया जाए। तो आचार्य जब भी कोई श्लोक का वर्णन करते हैं उनको जिस प्रकार भगवान प्रेरणा देते हैं, उनको किस प्रकार भगवान स्फूर्ति देते हैं, उस हिसाब से वो अपने भाष्यों को, अपने जो भाष्य है उसका वर्णन करते हैं। तो ये पहला शब्द का अर्थ हुआ। तीसरा शब्द क्या है, लंघनैः का अर्थ क्या है, वो कूदते थे। तो कूदने का विषय में वर्णन हुआ है कि कोई ऊंचा पहाड़ है, एक पहाड़ के ऊपर से नीचे कूद जाते थे, और कभी कभी जमीन में चलते चलते कोई गड्ढा दिखाई पड़ा उसके अंदर कूदते थे। कभी कभी मान लो कि चल रहे तो अचानक से कुछ ग्वाल बाल जो है एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, बड़े ऊपर पत्थर के ऊपर चढ़ जाते थे, वो चढ़ेंगे वापस कूदेंगे। जैसे एक बच्चा मतलब 7-5-6 साल का बच्चा होता है उसको आप रास्ते में लेके जाओ, वो कभी भी सीधा नहीं चलेगा। कैसे चलेगा वो रोड सादा रोड है, समझ वो नहीं चलेगा, कुछ तो उसको साइड में कुछ ऐसा गड्ढा जाके उधर उधर कूदेगा, इधर कूदेगा, मतलब कभी भी वो लोग कभी सीधा चलते थे नहीं थे, लंग नहीं कर दिया है, वो कूद कूद के चलते थे। ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ ये हुआ इसका, दूसरा अर्थ एक आचार्य कहते हैं, ये पूरा जो श्लोक है एक कुश्ती के पहले की जो पांच स्टेप पे उसका वर्णन हो रहा है, यानी कुश्ती के समय की जो पांच स्टेप उसका वर्णन हो रहा है। भ्रमण करते करते तो आपको जब कुश्ती करने वाले क्या करते हैं, वो अपना हाथ पैर हाथ को ऐसा ऐसा करते ना, हाँ, और कूदते हैं लंगर नहीं, मतलब अभी वो पकड़ने से पहले, दूसरे व्यक्ति को पकड़ने से पहले जो कूदने की जो बात है उसका वर्णन हो रहा है। ये लंगन ही इसका अर्थ हुआ। अब ये तीसरा शब्द है इसमें, खेपाई ही। खेपाई मतलब क्या है, फेंक देते। तो क्या फेंकते थे, एक आचार्य ने वर्णन किया कि वो पत्थर फेंकते थे, जैसे बच्चे को मालूम है कभी भी रास्ते में जाएंगे कोई पत्थर मिला तो एकदम फेंकना शुरू करेंगे, दूर दूर फेंकेंगे और कॉम्पिटिशन चलता है कौन कितना दूर फेंक सकता है, और कभी कभी झगड़ा हो जाता है दोनों के बीच में, एक बाल बाल क्या करता है दूसरा बाल बाल को पकड़ लिया, उनको उठा के कहीं दूर जाके फेंक के आ गया। तो खेपाई मतलब उनको फेंकना, ये दूसरा अर्थ है। और तीसरा अर्थ ये हुआ कि ये जो कुश्ती के समय में सबसे पहला भ्रमण, दूसरा है लंगन है, तीसरा क्या है खेपाई। खेपाई मतलब क्या है, तुरंत जाके दोनों भिड़ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं पकड़ लेते हैं। ये जो है ये कुश्ती का तीसरा स्टेप हुआ। और चौथा, चौथा बात क्या है इसमें, चौथा स्टेप है आस्फोट नहीं। तो आस्फोट नहीं की अर्थ का अर्थ क्या है, तो आस्फोट नहीं का अर्थ इस प्रकार दिया है, एक दूसरे को ऐसा स्लैपिंग करना। स्लैपिंग मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, झापड़ मारना, एक दूसरे को झापड़ मारना। अभी आस्फोट नहीं का जो कुश्ती के विषय में अर्थ ये है, मान लो कि एक बाल बाल को पकड़ लिया, पकड़ के बस अभी नीचे फेंकने वाला है, तो आपको मालूम है कुश्ती में क्या होता है, अरे बस मैं हार गया करके धड़धड़ मारना शुरू करता है, या जमीन के ऊपर मारा जाता है, तो अभी बस हो गया, अभी छोड़ दो मुझे। तो ये आस्फोट नहीं। और अंततः पांचवा शब्द क्या है इस इसके संबंध में, वो है पांचवा शब्द है आस्फोट नहीं और विकर्षण नहीं। विकर्षण नहीं मतलब उनको खींच के लेके जाना। जब मान लो कि ग्वाल बाल हार गया तो क्या करता है दूसरा ग्वाल बाल, उसको एकदम खींचते हुए लेके जाता है। तो ये जो भगवान के जो ग्वाल बाल के जो लीलाएं हैं उनका वर्णन इन शब्दों के द्वारा किया गया है। तो आगे ये की श्लोकों में चिक्रीडितुहु ये शब्द है। चिक्रीडितु मतलब इस प्रकार की लीला उन्होंने किया, ही डिड सच पास टाइम्स। पासपोर्ट नहीं, विकर्षण नहीं, चिक्रीडितु, उन्होंने इस प्रकार ग्वाल वालन किया। बाद में ये समाप्त होने के बाद इनका उम्र का वर्णन हो रहा है, इनका अभी किस प्रकार ग्वाल बालों ने कैसे कैसे अपने अपने बीच में आदान प्रदान कैसे होता था उसका वर्णन हो रहा है। न्युध्येन काकपक्ष धरो क्वचित, क्वचित मतलब कभी कभी, कभी कभी वो क्या करते थे, काकपक्ष धरो का अर्थ है कि इन ग्वालों ग्वाल बालों का चूड़ा संस्कार हुआ था, यानी उनके जो बाल हो उसको उसको मुंडन का संस्कार हुआ था। मान लो कोई किसी का मुंडन होता है तो बच्चे लोग दूसरे बच्चे को क्या बोलते हैं, ये टकलू हो गया है। अलग अलग जात में अलग अलग समय में ये चूड़ा संस्कार होता है, चूड़ादान संस्कार होता है। ये 10 संस्कारों में से एक संस्कार है, एक महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उनका बाल उगता रहता है, बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद अभी एक उम्र होने के बाद उनको होश रहता है कि मुझे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये गंदा क्या है, उनका जब होश आता है तो उस समय उस बच्चे को चूड़ा संस्कार किया जाता है, यानी उनका मुंडन संस्कार बोलते हैं। ये मुंडन संस्कार अति महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, अलग अलग जात में अलग अलग समय में किया जाता है। ब्राह्मणों के इसमें चूड़ा संस्कार जो है 2.5-3 साल में किया जाता है, करीबन क्षत्रियों का वैश्यों का इसमें थोड़ा सा लेट में होता है, और कभी कभी कुछ लोगों का 5 साल के बाद होता है। प्रायः ये सब वैश्य है, इसे समझ लेना चाहिए कि इनका थोड़ा सा देर में हुआ था चूड़ा संस्कार, मतलब 5 साल के बाद हुआ था प्रायः। ये सब ब्रह्म विमोहन लीला सब हो गया है, ये समझना चाहिए। अभी कुछ कुछ बाल बाल कुछ छोटे भी थे, कुछ बड़े भी थे, और उनके वजह से उनके उम्र में भी थोड़ा सा अंतर था, लेकिन कृष्ण का बलराम का उम्र तो 5-6 साल तक हो गया है। तो एक चूड़ा संस्कार अभी भी कुछ बाल बालों को हुआ, तो चिढ़ाने के लिए क्वचित कभी कभी ये लोग क्या करते थे, काक पक्ष धरो। काक पक्ष धरो मतलब क्या है, उनके जो बाल नीचे वो लटकते थे, उनका नहीं कि चोटियां तो क्या बोलते हैं, शिखा जो है लटकता था, उसको पकड़ते खींचते थे। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम की लीलाओं का वर्णन इन दो श्लोकों में हुआ है। ग्रैब देयर हेड्स ऑन अदर बॉयज हेड इन ए प्लेफुल मैनर, उनको बड़े आनंद के साथ उनका एक दूसरे का खींचते थे। आगे वर्णन आता है किस प्रकार भगवान ने अन्य ग्वाल बाल, जब ये दूसरे ग्वाल बाल को इस प्रकार लीला करते हुए देखते थे, तो कैसे उनका वर्णन, कैसे उनका उलोन नृत्य कैसे करना शुरू किया, उनका वर्णन है। अभी ये गोलोक वृंदावन में जो नित्य लीलाएं जो होती हैं उसका वर्णन इन श्लोकों में हुआ है। अभी ये जो लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम में हमको जो प्राप्त होता है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि ये हम समझें या ये हम स्मरण करें कि गोलोक वृंदावन धाम में जीवन कैसे रहता है, हाउ द लाइफ इज। जैसे आपको कहीं जाना है तो उधर जाना है, तो जाने की जो तीव्र इच्छा है वो कब प्रकट होगी हृदय में, जब उधर के बारे में आप सुनेंगे, जब उधर का आनंद के विषय में सुनेंगे तब तीव्र इच्छा प्रकट होती है उधर जाना है करके। नहीं तो सोचेंगे ठीक है उधर क्या जाना है बाद में देख लेंगे। मान लो कि आपको कहीं दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने का उत्साह कब रहेगी, दिल्ली में क्या क्या है, क्या क्या चीज देखना होगा, उधर क्या होता है। तो जब उसके बारे में आप बार बार सुनेंगे तो निश्चित रूप में हमारे अंदर ऐसी इच्छा होगी कि मैं भी उधर जाऊं। तो ये 10वां स्कंध का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कि जैसे जैसे मैं कृष्ण के बारे में लीलाओं को पढ़ते जाऊं सुनते जाऊं, तो कितना आनंदमय जीवन है कृष्ण के साथ, इस आनंदमय जीवन का एक झलक हमको इस भागवत में प्राप्त होता है। जब इसके बारे में सुनेंगे, श्रवण करेंगे और तुलना करेंगे, ये तो भौतिक झंझट जगत में क्या क्या होता है, देखो इनके कंपैरिजन में जो है आध्यात्मिक जगत को दर्शाया गया है। मतलब भगवद्गीता में भी ये चीज का वर्णन किया गया है, आध्यात्मिक जगत क्या है और भौतिक जगत क्या है, इन दोनों का वर्णन हुआ है। दोनों का वर्णन इसलिए हुआ है कि आपको डिसाइड करने के लिए आप कहाँ हो, अभी कहाँ जाना है और क्यों जाना है। और जैसे हमको मालूम पड़ेगा कि आध्यात्मिक जगत कितना अद्भुत है, तो हमारे अंदर तीव्र इच्छा रहेगी बस अभी इसको छोड़ना नहीं, खत्म, मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कहाँ है, वह आध्यात्मिक जगत में जाना है। आई हैव टू गो बैक होम बैक टू गॉड, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो जीवन का लक्ष्य को नहीं भूलने देने के लिए दूसरा, और उधर जाने के लिए आध्यात्मिक जगत में जाने की जो तीव्र इच्छा है उसको प्रबल बना के रखने के लिए हमको ये भागवत के 10वां स्कंध में ये लीलाओं को प्राप्त होता है। अब देखिए ये जो कृष्ण के साथ 24 आवर्स आनंद, इधर क्या है, प्रत्येक स्टेप में समस्या, प्रत्येक कदम में समस्या है। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। देखो इस जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु अनुदर्शनम, हमेशा यही देखो कि इस जगत में पूरा तकलीफ ही तकलीफ है। अगर आप कोई सोचते हो तो जी बहुत समस्या है मेरा, तो समस्या है तो उसका समाधान क्या है? उसका एक ही समाधान है, इस जगत को छोड़ के चले जाना। भगवत धाम में इस जगत को आप सुधारने का प्रयास मत करो। डोंट मेक दिस वर्ल्ड इनटू वैकुंठ, गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कहाँ जाना है? भगवान की धाम में जाना है। और हमको यही शिक्षा देना है लोगों को। क्या शिक्षा देना है? आप इधर कुछ भी कितना भी हंगामा कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, ये जगत भौतिक ही रहने वाला है। इससे हमको भगवान की धाम में जाने की रास्ता रास्ते में तीव्रता को प्रकाशित करना और संलग्न हो जाना भक्ति मार्ग में एकमात्र समाधान है सारी समस्याओं का। एक बार किसी ने कहा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद इज इट नॉट कवर्डाइज, एक कायर पंतनी है, मान लो कि बहुत इधर बहुत सारा समस्या है, आप बोलते हैं भगवान की धाम में जाओ, समस्याओं को सुधारना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया, कहा कि इफ देयर इज अ हाउस इज ऑन फायर, आपका घर आग लगा हुआ है तो क्या करोगे? आप घर से भागने का प्रयास करोगे? नहीं तो घर के अंदर बैठ के पानी लगाओ क्या? नहीं, पहले घर से बाहर जाओ, बाद में कुछ बचा है तो पानी डालने के लिए प्रयास करो। फर्स्ट गेट आउट ऑफ द हाउस। उसी प्रकार ये जो जगत है, ये भौतिक जगत में आग लगा है, सबसे पहले क्या करना है? जैसे बाहर निकलो तो बाद में कुछ और सोचो। हम सोचेंगे नहीं भाई थोड़ा सा सुधर जाएगा, मैं थोड़ा पानी डालूंगा, नहीं कुछ ये हो जाएगा, भाई बस अभी 2 घंटे के बाद ठीक हो जाएगा, नहीं तब तक आप जल जाओगे। उसी प्रकार ये जो भौतिक जगत है, इससे निकलने के लिए हमको तीव्र प्रयास करना चाहिए। उसके लिए ये लीलाएं बताया गया है कि आपका आध्यात्मिक जीवन कितना अद्भुत है, कृष्ण के साथ कितना अद्भुत रहेगा। तो ये कृष्ण का जिक्र, जैसे वृंदावन में प्रवेश के एक आचार्य ने वर्णन किया स्पष्ट रूप में भ्रमण ही शब्द के द्वारा, कैसे भ्रमण करते थे? जैसे शुरुआत किया पूरा फॉरेस्ट में, पूरा वृंदावन में भ्रमण करते थे। ऐसा नहीं कि एक जगह ऐसे खड़े है कृष्ण थक के मारे, नहीं, 24 आवर्स डांसिंग, यानी दूसरे शब्दों में जब भी ग्वाल बालों के साथ उनका डांस ही चलता था, कभी खत्म नहीं होता था, है कि नहीं? तो ये आनंदमय लीला है। केवल आनंद कांड बोलते ना, ये है, ये केवल आनंद कांड है। तो ऐसे ऐसे लीलाएं हमको इस अध्याय में और अन्य अध्याय में प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? क्वेश्चन प्लीज। हाँ बराबर है, हाँ है। एक चीज नहीं है उधर, एक है ईर्ष्या। काम क्रोध लोभ मोह मद 5 है, मात्सर्य नहीं है। एक चीज नहीं है, वो है मात्सर्य। मात्सर्य मतलब क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है वो प्रेम का अभाव को ईर्ष्या कहा गया है। क्या कहा गया? प्रेम का अभाव को ईर्ष्या कहा गया। आध्यात्मिक जगत में हर जगह प्रेम प्रेम भरा हुआ, तो ईर्ष्या की बात ही नहीं है उधर। काम है, गोपियां कृष्ण से काम करती है, कामना रहती है, क्रोध भी रहता है, यशोदा क्रोधित हो जाती है ना कृष्ण के ऊपर कभी कभी। हाँ, काम क्रोध लोभ है, गोपियां कृष्ण को देखने की लोभित हो जाती हैं, लोभ है। और काम क्रोध लोभ कुछ उस गाय बछड़े यमुना नदी सब कृष्ण की सुंदरता को देख के एकदम मोहित हो जाती, घास खाते खाते गाय जो है मुंह खोल के बैठ जाती है, घास अंदर है लेकिन ऐसे कृष्ण सुंदरता को देख के मोहित हो जाती है। ये भी मोह है, काम क्रोध लोभ मोह मद है। एक एक ग्वाल बाल सोचता है कि मेरे बराबर कोई नहीं है, देखा हाँ मैं कृष्ण के साथ में हूँ। कभी कभी कृष्ण भी चैलेंज करते हैं, चलो मैं कृष्ण को हराता हूँ। मद है तो जो भी है ऐसे कृष्ण के संबंध में है। लेकिन इस जगत में काम क्रोध लोभ मोह मद जो है ये अपने संबंध में है। क्या सोचते हैं लोग? मुझे आनंद मिलना चाहिए, मेरी काम को संतुष्ट करूंगा, तो मैं मेरे अगेंस्ट में कोई गया तो तो उसके ऊपर मैं क्रोधित हो जाता हूँ। है आध्यात्मिक जगत में ऐसा है। और कोई प्रश्न है? नहीं प्रश्न, ठीक है।
यंत्राश्रम भागवतम की उपाधि चाहे